नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की और नई दिल्ली महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2100 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 106 इकाइयां निर्धारित पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 78 फैक्ट्रियां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वैध संचालन सहमति के बिना ही चल रही थीं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 44 इकाइयों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है, जबकि 33 गैर अनुपालन वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को सरकार सहयोग देगी। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम को सकारात्मक सुशासन का एक अच्छा उदाहरण बताया है। उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कॉरिडोर पर रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो एक समय देश में अकल्पनीय था। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जो परियोजना शुरू हो उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया।
आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद तथा सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। विशेष लोक अदालत की 16 पीठों के समक्ष 600 से अधिक मामले सूचीबद्ध किए गए थे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रशांत विहार में आज मेगा मार्च का आयोजन किया। श्री वाही ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित मार्च में लगभग 2 किलोमीटर चलकर श्रमदान किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने सड़क किनारे लगे पेड़ों की छटाई करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने और गड्ढों को भरने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। मार्च के दौरान मच्छर मारने वाली कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। श्री वाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। महापौर ने कहा कि स्वच्छता दिल्ली नगर निगम का प्राथमिक कार्य है, लेकिन दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की इस मुहिम हमें जनता का भी साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाकर और घर से निकलने वाले कूड़े को सही तरीके से पृथक कर तथा कूड़े को कूड़े की गाड़ी में डालने का संकल्प लेकर हम इस मुहिम को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, कूड़ा मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
महापौर प्रवेश वाही ने आज उत्तर पश्चिम क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 8 में आयोजित एंटी डेंगू माह जागरूकता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आने वाले हफ्ते में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग करने के आदेश भी दिए। श्री वाही ने मच्छरों की रोकथाम के लिए और उनसे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 011-2705-0132 और 011-2705-0133 हेल्पलाइन नंबर जारी किया। महापौर ने कहा कि नागरिक इन नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जोन के उपायुक्तों ने एक वार्ड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में नगर निगम ने कहा कि संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे और शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें विकास की प्राथमिकताओं, असरदार तालमेल और बेहतर सर्विस डिलीवरी जैसे विषय शामिल थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि अच्छे कानूनों के लिए अच्छे तथ्य, विश्वसनीय शोध और जमीनी स्तर के प्रमाण आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ये ज्ञान विधायिकाओं और सरकारों तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदार बनना होगा। ये बात विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फिर फ्री टू एयर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिले की टीम ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। अभियान के अंतर्गत आर्म्स एक्ट के तहत 29 मामले, विभिन्न आपराधिक और निवारक कार्रवाइयों के अंतर्गत 151 लोगों को तथा आबकारी अधिनियम के मामलों में अवैध शराब के 501 पाउच और लगभग 1800 बोतलें बरामद की हैं। इसके अलावा डकैती और झपटमारी के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये प्रवर्तन अभियान इस महीने की 17 तारीख से 20 तारीख तक चलाया। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने अवैध शराब की आपूर्ति में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 778 क्वार्टर और आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले 2 वाहन भी बरामद किए हैं। दिल्ली के मधुबन चौक पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्काई वॉक और फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटर रिंग रोड पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और इसे 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये स्काई वॉक FOB पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला न्यायालय के बीच सुरक्षित पैदल संपर्क उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्राओं ने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व और इसकी गहरी लोकतांत्रिक विरासत को करीब से जाना और समझा। दिल्ली विधानसभा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सार्थक लोकतांत्रिक आउटरीच पहल के जरिए युवाओं की भागीदारी को लगातार मजबूत बना रही है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत पावन माटी कलश वंदन और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सोमवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी को चीन की ली यू शेंगचू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज लोगों को मजभरी गर्मी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा भी हो सकती है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत अपराधों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की और नई दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।